તારીખ 31/1/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 7.
અનંત ચૈતન્ય ચિહ્ન સહિત અખંડિત ગુણ કુંજ કે ઓર પર્યાય કે ધારક દ્રવ કા જ્ઞાનાદિ ગુણ પરિણતિ રૂપ और पर्याय अवस्था रूप वस्तु का निश्चय हुआ। स्वरूप श्रद्धा से कैसे होती है वह कहा जाता है। अनुभव का तो एक साथ बने ना अनुभव है द्रव्य पर्याय बने ना अभेद में સ્વરૂપ શ્રદ્ધા થી આનંદ કંદ ની કેલી એટલે તો પરિણામ જ છે। એવી રીતે થાય, આવી રીતે અનુભવમાં નિશ્ચય થાય ત્યારે નિશ્ચય પ્રસિદ્ધપણે તો અનુભવના નિશ્ચયને જ નિશ્ચય કહે છે। અનુભવ પૂર્વક જો નિશ્ચય હુઆ ઉસકો નિશ્ચય કહેતે હૈ, પહેલે વાળા નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ રૂપ સે નહીં કહેતે। જ્ઞાન જાણને માત્ર, દર્શન દેખને માત્ર, સત્તા અસ્તિત્વ માત્ર તથા વીર્ય વસ્તુ નિષ્પત્તિ નિષ્પન્ન સામર્થ્ય માત્ર, કેવલ એસે પ્રતીતિ ભાવ કો રુચિ ભાવ કો આસ્તિક્યતા રૂપ સંધાન કો શ્રદ્ધા કહેતે હૈ। હા, ભેદ પેડા છે, પણ એ તો સમજાવવા માટે તો શું કરે, ગમે તે એક વાત લે કે અનેક વાત લે, પણ સમજાવવામાં તો ભેદ આવી જાયગા। સમજાને કે લીએ ભેદ કહેતે હૈ, ઉસસે ઉસ શ્રદ્ધા સે ઉત્પન્ન હુએ આનંદ કંદ મે કે લીએ કરકે મેં સુખી હોતા હું। જાનને સે જો આનંદ હોતા હૈ વો જ્ઞાનાનંદ, દેખને સે જો આનંદ હોતા હૈ વો દર્શનાનંદ, એસા કરકે ભેદ સે સમજાતે હૈ। અનુભવ મે તો કહાં ભેદ હૈ, લેકિન ભેદ સે સમજાતે હૈ। જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ ભી હૈ, આનંદ રૂપ ભી હૈ, ઓર જ્ઞાન કા વિષય ભી આનંદ હુઆ, એક સાથ દો આનંદ હો ગયા ને એકાકાર એસે। ઉપચાર છે તો ક્યાં હૈ કે ભેદ ભેદ લે વે તો વે તો તો વૈસે તો સારા જો દ્રવ હૈ ઉસકા અવલંબન આતા હૈ તો ઉસકા અનુભવ હુઆ એસા કહેને મેં આતા હૈ ને, તો ઉસમે સબ ગુણ આ જાતા હૈ, કોણ ગુણ બાકી રહેતા હૈ, દ્રવ કા અવલંબન મેં કોઈ ગુણ બાકી તો નહીં રહેતા।
જૈસે જાનના ઇસકે સે ગુણ જ્ઞાન કા હૈ,
નહીં નહીં, લેકિન એક ગુણ કો આનંદ ગુણ કા રૂપ હૈ ને, ઇસલિયે આનંદ કે અનુભવ કે કાલ મેં આનંદ આનંદ ને હોતા હૈ ઓર આનંદ રૂપ પરિણમન ભી જ્ઞાન કા હોતા હૈ, દોનો બાત હૈ ઉસમે। હાં, સબ ગુણો મેં આનંદ કા રૂપ, ઇસલિયે તો કહેતે કે જ્ઞાન કા આનંદ, દર્શન કા આનંદ, એસે સબ કા આનંદ કહેતે હૈ ને, જ્ઞાન કા અસ્તિત્વ, દર્શન કા અસ્તિત્વ, શ્રદ્ધા કા અસ્તિત્વ, સબ કા અસ્તિત્વ કહે, એસે સબ કા આનંદ કહે, એસે। नीचे नो पैराग्राफ, जैसे दीपक के पांच पर्दे हैं, दीपक को पांच पर्दे हैं, उस प्रकार मति ज्ञानी को स्वरूप का प्रभाव एक अंश में ही ऐसा जगा कि केवल ज्ञान का शुद्धत्व प्रतीति द्वारा हुआ। इस अनुभव को एक अंश होता है ना, पूरा नहीं होता है, पूरा अनुभव तो होता है तेरहवें गुण स्थान में, इसलिए मति ज्ञान में जो अनुभव हुआ वो एक देश अनुभव कहने में आता है। ऐसे अंग में सर्वांग होते हैं, लेकिन अनुभव का जो नाप है वो एक देश है, अनुभव खुद एक देश है, ऐसा आंशिक अनुभव उसको बोलते हैं, पूरा अनुभव तेरहवें गुण स्थान में होता है। ऐसे आंशिक स्व संवेदन को ऐसे तो चतुर्थ गुण स्थान में जघन्य अंश में अनुभव हुआ मति ज्ञान में, लेकिन उसका विषय केवल ज्ञान, पूरा विषय पूर्ण है, अनुभव करने वाली पर्याय अल्प है और उसका विषय पूर्ण है, पूर्ण है, मति ज्ञान अल्प है, उसका वेदन अल्प है और उसका विषय पूर्ण है, ऐसा शुद्ध तो प्रतिदिन इससे अशुद्ध अशुद्ध अंश को भी अपना नहीं मानता, इसलिए रागांश रहा उसको अपना स्वरूप नहीं मानेगा, उसको पर जानेगा, राग को पर जाना। फिर स्वसंवेदन मति ज्ञान द्वारा हुआ है, स्वसंवेदन तो हाँ मति शुद्ध दोनों, श्रुतमा भी मति में भी है, ज्ञान में अनुभव है तो ज्ञान में मति स्वरूप दोनों ज्ञान है, नहीं नहीं मत दोनों में है। इसका कारण ये है कि जब अनुभव होता है तो पहले मति ज्ञान के पर्याय को स्वसन्मुख किया, श्रुत ज्ञान के पर्याय को स्वसन्मुख किया, तो श्रुत मति पूर्वक ही उत्पन्न होता है और दोनों का विषय आत्मा ही होता है, मति का विषय पर द्रव्य और श्रुत का विषय आत्मा, ऐसा नहीं होगा शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग में मति का विषय आत्मा ही होता है, ऐसा स्वसंवेदन मति द्वारा हुआ है, ज्ञान प्रकाश मेरा है, इस प्रकार शुद्ध ज्ञान में विचार करे, विशेष जो विचार चलता है वो शुद्ध ज्ञान में चलता है, पहले तो सीधा मति ज्ञान में आता है अपना स्वरूप। हाँ मति ज्ञान पूर्व के शुद्ध ज्ञान होता है, सीधा नहीं होता, क्रम पड़ता है। मैं ज्ञान रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, उस प्रकार चार ज्ञान में स्वसंवेदन परिणति द्वारा तो वह प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान पर को जानने से एक देश प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष पाचा अवधि मन प्रयोग तो पर को जानने से एक देश प्रत्यक्ष है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है वो तो वेदन प्रत्यक्ष है, बाकी तो मति स्रोत को परोक्ष में लेते हैं आगम विवेक्षा से। तो काय से कि सर्वावधि द्वारा सर्ववर्गणा परमाणु मात्र देखे, जिससे एक देश प्रत्यक्ष मन पर ही हुए पराये दूसरे को मन का जाने अथा एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है वो तो ठीक। अपना जानना ज्ञान मात्र वस्तु में प्रतीति हुई, जिससे सम्यक नाम मिला, ज्ञान मात्र वस्तु को केवल ज्ञान होने पर शुद्ध, जब तक केवल नहीं है तब तक गुप्त है। ज्ञान मात्र वस्तु तो केवल ज्ञान होने पर शुद्ध, जब तक केवल नहीं है तब तक गुप्त है। तो प्रकट अवस्था में ज्ञान मात्र वस्तु तो प्रकट अवस्था में केवल ज्ञान होने पर पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध तो अवस्था की बात है उतनी तो। तब तक केवल, जब तक केवल नहीं है तब तक गुप्त है, तो पूरे पूरे प्रकट नहीं थी वह आत्मा, पूरा प्रगट नहीं थी अवस्था में, अल्प प्रगट पण छे। आम तो अवस्था प्रधान बात है, पर्याय प्रधान द्रव की बात है। થોડો પડે છે કે કેવળ નો અર્થ ઓલું કેવળ જ્ઞાન નહી, જુદું પડીને, ભિન્ન પડીને, જ્ઞાન માત્ર વસ્તુ તો ભિન્ન હોને પર શુદ્ધ, કેવળ મેને અલગ હોને પર માત્ર, માત્ર અલગ ભિન્ન પડને પડને છે શુદ્ધ, પર જબ તક ભિન્ન નહીં પડે તબ તક ગુપ્ત હૈ, ગુપ્ત હૈ મેને નજર મેં નહીં આતા એસા એ જરા મેળ પડે છે, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લીધું છે ને એટલે એ મેળ પડે છે, ઠીક છે। કેવળ જ્ઞાનમાં ઓર પૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન એમ નહીં, ભિન્ન ભિન્ન હોને છે એસા। નામ ફેલી છે કેવળ એકનું, કેવળ નહીં જબ તક કેવળ નહીં તો પૂર્ણ એમ, કેવળ મેં પૂર્ણ, હા પૂર્ણ જ્ઞાન ની વાત આવે છે, તો એ પર્યાય પ્રધાન અર્થ કરવો પડે। પ્રત્યક્ષ કર કરકે સ્વસંવેદન બઢાતા હૈ, એ ત્રિકાળી જ્ઞાન માત્ર ઇદ્ર। ત્યારથી વસ્તુ પ્રગટ જ્ઞાન માં આવી જાય છે, પણ એને આત્મા પૂરો પ્રગટ થયો એમ નથી કહેવાતું, પર્યાય પ્રધાન વાત ચલતી હૈ। પૂરા પ્રગટ નહીં હુઆ આત્મા, કેવળ જ્ઞાન મેં પૂરા પ્રગટ હો ગયા આત્મા એસા। આત્મા પરિણમન હોતા હૈ ને તો આત્મા અલ્પ શુદ્ધત્વ રૂપ પરિણમન હોતા હૈ, જૈસે જૈસે સાધક અવસ્થા બઢતી હૈ આત્મા ઓર પ્રગટ હોને લગે, જૈસે બીજ મેં સે ચંદ્ર હુઆ, તો ચંદ્ર તો થા ઉતના થા, લેકિન બીજ મેં વ્યક્ત હુઆ ઉતના હી પ્રગટ હુઆ, ફિર ત્રીજી મેં, ફિર ચોથ, પંચમી, અષ્ટમી એસા। હા વિષય પૂરા હૈ લેકિન પ્રગટ હોને મેં અધૂરા હૈ, અધૂરા કા વિષય પૂરા હૈ, વિષય અધૂરા હૈ, વિષય પૂરા ઓર વિષય કરને વાલા વિષય અધૂરા, એસી બાત હૈ। મેરે દર્શન જ્ઞાન કા પ્રકાશ મેરે પ્રદેશ મેં સે ઉઠતા હૈ, ક્ષેત્ર લિયા મેરે પ્રદેશ મેં, મેરા જો પૂરા ક્ષેત્ર હૈ પૂરે ક્ષેત્ર મેં સે મેરા જ્ઞાન દર્શન કા પ્રકાશ પ્રગટ હોતા રહેતા હૈ, એસા અવલોકન સે જાને, ક્યા એસા अवलोकन से जाने, मात्र विचार करे ऐसी बात नहीं है, जो हो रहा है उसको अवलोकन से जाने। ऐसा जानपना मेरे में है, ऐसी प्रतीति करने पर आनंद हो, वो निर्विकल्प सुख है, वो आनंद है, वो निर्विकल्प सुख है। ज्ञान उपयोग आवरण में गुप्त है, ज्ञान में आवरण नहीं है। ज्ञान उपयोग आवरण में गुप्त है और ज्ञान में आवरण नहीं है। तो जितना ज्ञान खुला है उसमें आवरण नहीं है, जितना नहीं खुला है उतना ज्ञान आवरण में है। हाँ, ज्ञान उपयोग आवरण में गुप्त है। हाँ, तो क्या है? वो तो ठीक है, तो प्रकट पर्याय नहीं है, वहां तक तो आवरण है, उतना प्रकट नहीं है, और ज्ञान में आवरण नहीं है। ज्ञान खुद जितना प्रकट है उसमें आवरण नहीं है, और पूरा प्रकट नहीं है तो उतना आवरण है। ऐसा ऐसा लेना, भाषा ऐसी है ना, वस्तु ऐसी है कि ज्ञान में आवरण नहीं है, क्योंकि जितना प्रकट है उतने तो आवरण नहीं है। आवरण कितने में है कि जितना पूरा प्रकट नहीं है तो बाहर में आवरण भी है। ऐसा अस्ति नास्ति दोनों लागू पड़ता है, निरावरण भी है और आवरण भी है। ऐसा कहा ऐसे कि जितने अंश में आवरण गया उतना ज्ञान हुआ, वो स्पष्ट कर दिया कि जितने अंश में आवरण गया उतना ज्ञान हुआ, अतः ज्ञान आवरण से भिन्न है, और जितने अंश में आवरण नहीं गया उतना आवरण है, उतना उपयोग आवरण में गुप्त है। हम तो आवरण बे रीते थे, एक अनुभव मापन आवरण छे, अने जान मापन आवरण छे, वेदन में भी आवरण है और जानने में भी आवरण है, दोनों में आवरण है। जितनी व्यक्ति नहीं है, अव्यक्ति है, उतना गुप्त है, और गुप्त है उतना आवरण है। ऐसा त्रिकाली में तो आवरण होता ही नहीं, त्रिकाली में तो आवरण होता ही नहीं, वो स्वभाव है। स्वभाव निरावरण है, और पर्याय जितनी प्रकट हुई उतनी निरावरण है, जितनी प्रकट नहीं हुई अल्पत्व रहा उतना आवरण है वो पर्याय में। ऐसा स्वभाव को आवरण नहीं होता, इसलिए उसको निरावरण कहते हैं। वास्तव में आवरण निरावरण की अपेक्षा उनको लागू नहीं पड़ती। ये श्यालवाद शैली में इसलिए लोग गुंजन में आ जाते हैं कि एक ही चीज को उलट सुलट कहने में आती है, कहते हैं इसे विरुद्ध भी कहे। जैसे समय सार की 34 गाथा लो, ज्ञान प्रत्याख्यान है, तो ज्ञान स्वयं त्याग रूप है, लेकिन तो उसको त्याग का नाम देना भी बेकार है। क्या बोलना समझ आते हैं? इसलिए वस्तु दर्शन है वहाँ वाणी पुरवार पर अविरोध है, और जहाँ तक वस्तु दर्शन नहीं है तो वचन में विरोध आए बिना रहेगा नहीं, ऐसी बात है। प्रत्याख्यान ना समय प्रत्याख्यान करने योग्य ऐसे जो प्रभाव, उसकी उपाधि मात्र से प्रवर्ता हुआ त्याग का कर्तापना का नाम आत्मा को होने पर भी, क्योंकि इसकी उपाधि से वो प्रवर्ता था, पर मार्ग से देखने में आवे तो प्रभाव का त्याग कर्तापना का नाम भी अपने को नहीं है। तो नाम है भी और नाम नहीं भी है, दोनों लिया के नहीं लिया। वस्तु दर्शन नहीं हुआ तो पता नहीं चले कि कैसे दो बात करते हैं। एक कहते कि उसको नाम है, ऊपर का त्याग करता है इसलिए तो प्रत्याख्यान है, वास्तव में इसका स्वरूप देखो तो उसमें तो कुछ है नहीं, उसको नाम देना भी बेकार है। स्वयं तो उस नाम से भी रहित है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छुटा ही नहीं, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। ऐसे डबल बात करते हैं। कथन में भी ऐसा है, एक ही चीज को दो विरुद्ध कथन से भी कहते हैं, सबौत कथन शास्त्र में है, एक चीज को दो विरुद्ध कथन से कहते हैं तो लगे कि वो कैसे होता है, लेकिन वैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सिद्ध हो सकता है, थोड़ा विचित्र लगे लेकिन है ऐसा। परिणति में आत्मा है, मैंने मैंपना कहाँ पकड़ने में आता है, अस्तित्व ग्रहण कहाँ होता है, परिणाम में होता है। आत्म परिणति में आत्मा है, मैं हूं ऐसी परिणति द्वारा आत्मा प्रकट होता है। मैं हूं पने की मान्यता स्वपद का साधन है, मैं में परिणामों से स्वपद की आस्तिक्यता की। हाँ, मैं परिणाम तो मैं कहता हूँ, कोई दूसरा थोड़ा कहता है ऐसा। मैं ऐसा परिणाम कौन कहता है? तो मैं कहता हूँ, दूसरा तो कोई नहीं कहता। मैं अपना आप विषय, ये सब विषय सिर्फ अर्थ घटन का नहीं है, ये अनुभव प्रकाश का विषय वो भाग जो बात कही है उसके अनुभव में जाने के लिए है। अगर सही समझना हो तो वहां तक नहीं जावे तो शब्द का अर्थ समझ करके संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऐसा कहता है, ठीक है उधर ऐसा कहता है, इस पेज में ऐसा कहता है, उस प्रकरण में ऐसा कहते हैं, ऐसा हो गया, उतना नहीं लेना है। ये सब बात उन्होंने अनुभव की बात अनुभव पद्धति से किया है, तो समझने में भी अनुभव पद्धति में आकर के समझना है। जब बराबर समझ में आता है और उसका रस भी आता है, सिर्फ अर्थ करने में उतना रस नहीं आएगा जिसका वो अनुभव पद्धति में आने से रस आता है। ये शास्त्र ऐसा है, अनुभव का इस पद्धति का शास्त्र है ये। अनुभव प्रकाश का स्वाध्याय करने का ढंग ही दूसरा है, वो वांचन पद्धति का ग्रंथ नहीं अर्थ करने की पद्धति का ग्रंथ नहीं है, ऐसी पद्धति है उनकी, बहुत प्रैक्टिकल साइड की है। जो प्रयोग करते हैं कर सकते हैं उनके लिए ये शास्त्र बहुत रुचि का विषय, रस का विषय हो जाता है, वरना तो उनकी भाषा ऐसी के समझ नहीं पड़े क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं। मैं ऐसा भाव कहाँ होता है, ऐसा लेते हैं। मैं हूँ, अभी मैं वजूद हूँ, मेरी विद्यमान पड़ती है कि मैं हूँ इसमें क्या कि मेरी विद्यमानता मुझे मालूम पड़ती है। कहाँ मालूम पड़ती है कि मैं हूँ ऐसे भाव में मालूम पड़ती है, मैं हूँ ऐसे भाव में मालूम पड़ती है, ऐसा लेना है। तो ये प्रैक्टिकल साइड का सब विषय है उसका अर्थ क्या करे, मैं हूँ इसका अर्थ क्या करे ऐसा अपनी विद्यमानता को संभालना पड़ता है, वो संभाल करके फिर वो देखे कि हाँ मैं हूँ कहाँ हूँ, मेरी विद्यमानता कहाँ दिखने में आती है, कहाँ पकड़ने में आती है कि मेरे परिणमन में मेरे अनुभवन में ये मेरी विद्यमानता मालूम पड़ती है। उसकी मौजूदगी में ही सब जानने पर ये व्यवहार चलता है संसार का। कोई भी काम होता है राग का विकल्प का तो पहले तो जानने का होता है, जानने के बाद आगे कुछ कुछ चलता है। तो जो पहला है जो उर्ध है उसको भूलता है, उतना गौण करता है कि उसको भूल जावे पूरा का पूरा। बस यहां से विपर्यास चालू हुआ है। क्या जो उर्ध है उसको उर्ध नहीं रखा तो विपर्यास वहां से चालू हो गया है। जो उर्ध है उसको उर्ध रखो और सब गौण हो जाएगा तो वो सम्यक है, वो सही है। उर्ध है उसको छोड़ दिया तो वो बड़ी भूल है। ऐसा किसकी भी विद्यमानता में सब जानने में आता है। जैसे शक्कर है, हर उसकी हर कण में मिठास है, शक्कर के हर कण में इसकी मिठास है। ऐसे ये जो ज्ञान पिंड आत्मा है उसके हर प्रदेश में ज्ञान उतना है कि सब पहले ज्ञान ही होता है। हर हर बात में पहले तो चाहे खाओ चाहे सुनो चाहे देखो चाहे स्पर्श ठंडी गर्मी का अनुभव करो, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान होता है। तो ज्ञान का स्वभाव ही उर्ध है। उसको पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, यहां से बड़ा विपर्यास वहां से चालू हो गया तो फिर उल्टे घड़े पर सब उल्टा घड़ा आता है। यहां से घड़ा उल्टा हो गया तो सब आगे की बात सब उल्टी उल्टी फिर चलती है। फिर जितना कार्य होता है सब उल्टा, क्योंकि पहला घड़ा ही उल्टा है। ऐसा बनता है।
राजा को कौन किया इसके तकलीफ की तकलीफ?
हाँ
जिसके राज्य में रहना
है। हाँ हाँ तो वो कैसे चलेगा? वो कैसे चलता है? नहीं चल सकता। इसलिए कहते हैं ऐसे तुम गुण गौण कर वो नहीं चले। अपने को गौण कर वो नहीं चले। इसलिए सभी प्रकार की उपाधि दुख जो भी आपत्ति है वो उसी कारण से है। ये सब जितना भी आत्मा को गौण करके जितना भी अपना सृष्टि बनाया, जितनी भी अपनी सृष्टि बना ली ने वो एक दुनिया है। अपनी दुनिया में फिर दुखी होता है जीव, वास्तव में तो दुखी होता है। और अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वरूप को मुख्य करने से एक नई सृष्टि नई दुनिया पैदा होती है, जहाँ हर जगह सुखी सुख होता है, जहाँ हर जगह दुखी दुख होता है। जैसे कि कोई आदमी निर्धन था तो भी दुखी और सधन हुआ तो भी दुखी। क्यों? कि ये दुख की दुनिया है। वैसे यहाँ से ज्ञान को मुख्य करने से स्वरूप को मुख्य करने से एक दुनिया दूसरी सृष्टि पैदा होती है, नई दुनिया में प्रवेश होता है जहाँ सब सुख ही सुख है, कहीं दुख नहीं है, ऐसी एक दुनिया है। ऐसी बात है। तो शुरू से ही ये सारी दुनिया बदल जानी चाहिए। ये अनुभव शुरू से होना चाहिए। और ये पूर्णता के लक्ष्य से ये नई दुनिया में प्रवेश होता है, क्योंकि शुरुआत होती है ना वास्तविक शुरुआत, वो नई दुनिया की शुरुआत है। दुनिया वालों तो चीज विषय तुम्हें जितनी बार विचारो इतनी बार नव नव सूझे। और फिर नई दुनिया चालू होती है, उनकी लगन भी नई प्रकार की, उसकी भावना भी कोई अलौकिक, और उसका सारा जो अवलोकन है वो भी सब अलग बात है। उसकी आनंद गंज ने उगाया गगन मंडल में गौवा बिहानी वसुधा दूध जमाया। माखन था सो बिरला खाया छासे जग भरमाया। ऐसे मेरे गुरु है जो इन पद से करे निवेड़ा, ऐसा करके लिया है। संसार में से निवेड़ा करे ऐसा मेरे गुरु है। रस बहुत है लिखने में, बात तो धारा प्रवाह लिख गए हैं लेकिन उनका रस बहुत है। अनुभव की महिमा और जगह तो बहुत किया है, स्वरूप की महिमा भी उतना ही किया है, दो जगह महिमा करते हैं। दोनों धारणा करना और उसका पूरा बंडल उठाना एक ही बात है। धारणा में कुछ नहीं, मतलब धारणा करना भी एक उपाधि है कि स्मरण में रखना पड़े, वो भी एक उपाधि है, ऐसा लिया है। हाँ, शुरू शुरू में 23वां वर्ष में पहले अशुभ विकल्प होते थे वही खाते में, और शास्त्र में उपयोग लगाया तो शुभ भाव होने लगा। ज्ञान नहीं हुआ, शुद्धता नहीं हुई तो दुकान बदली और कुछ नहीं किया। हाँ, शास्त्र तो मुक्त होने के लिए, शास्त्र तो मुक्त होने के लिए निमित्त है, शुभभाव का निमित्त नहीं है। जैसे भगवान भी मुक्त होने के लिए, तो भगवान की वाणी है ना, मुक्ति के लिए है, शुभभाव करने के लिए नहीं है। फिर भी केवल शुभ भाव होवे तो मुक्त होने का तो कोई प्रयास नहीं हुआ। आत्मा आत्मभाव में रहे तब तो भाव बंध नहीं, आत्मभाव में नहीं रहे तो राग में बद्ध हो जाए, राग में आत्मा प्रतिबद्ध हो जाए। राग में प्रतिबद्ध हुआ तो मुक्त कहां से हुआ, मुक्त नहीं हुआ। पत्र में दृष्टा, सिर्फ दृष्टा रहना, आत्मभाव में रहना, निर्विकल्प स्थिति लाना, आत्म स्वभाव में रमणता करना, मात्र दृष्टा भाव से रहना, ऐसा ज्ञानी का ठाम ठाम बोध है। यह बोध यथार्थ प्राप्त होने से इस जीव का कल्याण होता है। ऐसा बोध प्राप्त नहीं हुए तो कल्याण नहीं होता है, इसलिए ऐसी बोध की प्राप्ति की भावना में रहना योग्य है। ये लल्लू जी को चिट्ठी लिखा है, मोहनीय का स्वरूप इस जीव को बार बार अत्यंत विचारने लायक है। क्यों? कि मोहनीय मोहभाव ने महामुनीश्वरों को भी एक पल में उसके पास में फंसा करके अत्यंत सिद्धि से विमुक्त कर दिया है, और शाश्वत सुख उसका छिन लेकर क्षण भंगुर कृत्रिम सुखाभास में उसको ललचा करके परिभ्रमण करवाया है। ऐसा मोहनी मोह भाव ऐसे है। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है तो ये चीज ठीक लगती है, अच्छी लगती है। वो बात आई कहां से, क्यों मोह से आई, कहां से आई, मोह से आई। 746। जिसको पढ़ने से, समझने से, विचार करने से आत्मा विभाव से, विभाव के कार्य से, विभाव के परिणाम से उदास न हुआ, विभाव का त्यागी न हुआ, विभाव के कार्यों और विभाव के फल का त्यागी नहीं हुआ, भले पुण्य के फल हो, वो पढ़ना, वो विचारना, वो समझना सब अज्ञान है। कैसा शैली कैसा लिया है, अम्बालाल भाई को पत्र लिखा है। कर्म ग्रंथ विचार करने से कषाय आदि का स्वरूप कितना यथार्थ समझ में, कुछ कुछ यथार्थ समझ में नहीं आती, ऐसी कुछ बातें हैं वो विशेष अनुप्रेक्षा करने से और त्याग वृत्ति का बल से समागम में समझने योग्य है। समागम में समझने योग्य है इतना नहीं लिया, त्याग वृत्ति का बल से समागम में समझने योग्य है, ऐसी बात है। तो कितने की बात तो ऐसी है कि ज्ञान जो है मलिन है, वो मलिन मति से बात, ये शुद्धता की बात समझ में नहीं आती। समन्वय को जाए अनुभव प्रकाश, पर समन्वय लायक मति की विशुद्धि नहीं होवे, शुद्धि नहीं होवे, निर्मलता ही नहीं होवे, कहां से समझ में आएगा, ऐसा कहते हैं। विचार वृत्ति के साथ त्याग वृत्ति उत्पन्न करना, यही विचार सफल है, ऐसा कहने का ज्ञानी का परमार्थ है। नानस्य फलम वीरति। ज्ञान अवस्था में समझवानु छे, जो समझवानू कई फल ना आवे तो समझेलू बधु अज्ञान छे एम के छे। समझने पर कोई इसका फल नहीं आया तो ये समझा हुआ सब अज्ञान है, ऐसा कहते हैं। जैसे वो भागचंद जी ने लिया कि ज्ञान ज्योति जागी, और अंतर हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तो क्या हो गया कि रुचि समदम की बड़ी। समदम मैंने कि जब मैं निरालंब निरपेक्ष हूं, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं, फिर परिणाम में भाव, ये परिणाम दौड़ते क्यों है पर पदार्थ के प्रति, तो उनकी रुचि तो जैसा स्वरूप देखा उसी के अनुसार दूसरों से भिन्न होकर के, उपेक्षित होकर के वहां से छूटने की होगी, बंधने की नहीं होगी, वो सहज है। जब आत्मा असंग तत्व है, क्या आत्मा ही जब असंग तत्व है तो फिर संग वाले परिणाम का निषेध होगा ही होगा। इस प्रतीति में, असंग की प्रतीति में असंग भाव में रहना चाहेंगे तो संग वाले भाव का क्या होगा, तो उसका निषेध आएगा, उसकी रुचि नहीं रहेगी। बहुत सीधी बात है। समय का अवकाश पा करके या जुटा करके नियमित रूप से 2 से 4 घड़ी तक हाल में फिलहाल शिवगडांग शांत और विरक्त चित्त से विचार करने का है। स्वाध्याय कैसे करना? शांत और विरक्त चित्त से ऐसे स्वाध्याय करना, शास्त्र स्वाध्याय उस प्रकार के चित्त से करना, और नियमित रूप से दो चार घड़ी। इंद्रिय विषयों ना निग्रह पूर्वक नहीं तो सोचे कि राग से रंजित ज्ञान है, उसमें निर्मल वस्तु का फोटो कैसे आएगा? वस्तु तो परम पवित्र निर्मल है, भीतर में उसका ग्रहण कैसा होगा? वो ज्ञान में आएगी कैसे कि मैं ऐसा हूं? ज्ञान ही खुद मलिन है ऐसा।
जय हो परम कृपालु श्री महान गुरु जय हो।